नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई पुराने संघर्षों और विवादों का समाधान हुआ है। अपने एक दिवसीय मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री ने चूड़ाचांदपुर जिले में 7,300 करोड़ रूपये की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर बढ़ने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की अपील की।
मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में लगभग 2.5 लाख मरीजों ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब नागरिक की चिंताओं का समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के कारण विस्थापित परिवारों के लिए 7,000 नए घरों को मंजूरी दी गई है।
मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहाँ के लोगों के हित सुरक्षित रहे। जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती सुशीला की नियुक्ति महिला सशक्तिकरण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि विधायी संस्थाएं ऐसा मंच बनी रहेंगी जहां सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चाएं हों और सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में निर्णय लिए जाएं। श्री बिरला आज बेंगलुरु में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 11वें भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। गृहमंत्री ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। 16 और 17 सितम्बर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सरकारी विभागों के हितधारक भी शामिल होंगे। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि विकसित भारत के युवा संवाद नेता युवा नेतृत्व वाले लोकतंत्र का एक सच्चा उदाहरण है जो दृष्टि को आवाज में और आवाज को प्रभाव में बदल देता है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में श्री मांडविया ने बताया कि ये एकमात्र ऐसा मंच है जहां युवा न केवल अपने विचार साझा कर सकते हैं बल्कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
देश के हर युवाओं को मैं आग्रह करता हूं कि आप माई गव प्लेटफॉर्म पर आइए, क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करिए और आपका विचार विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का अवसर प्राप्त करें। इस उद्देश्य के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा है।
म्यांमार की सेना ने पश्चिमी रखाइन राज्य में 2 निजी आवासीय स्कूलों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में 19 छात्रों के मारे जाने की खबर है, 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। अराकान सेना और राहत एजेंसियों के अनुसार यह हमला कल देर रात हुआ। पीड़ितों की उम्र 15 से 21 वर्ष के बीच बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे क्रूर हमला बताया है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच दुबई के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर श्रीलंका ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।